ओम शांति। परमात्मा हमें संपूर्ण ज्ञान देते हैं, एक भी ऐसा पहलू नहीं है जो परमात्मा हमें बताते नहीं है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, हे बच्चे, कर्मों की गति अति गुह्य है, बहुत गहरी है, सूक्ष्म है। जन्म जन्मांतर हम अपने कर्मों का खाता लेके ही आगे चलते हैं। तो हम ऐसे कौन से कर्म करें जिससे हमारे आगे के लिए जो कर्मों का खाता है वो श्रेष्ठ हो जाए, पुण्य की पूंजी जमा हो जाए, और जो पुराने हमारे नकारात्मक कर्म हैं, विकर्म हैं, वो दगद हो जाएं, खत्म हो जाएं। तो ऐसी एक बहुत सुंदर टॉपिक है कर्म फिलॉसफी, जिसको हमारे बीच हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं आदरणीय भ्राता राजयोगी करण राणा भाई जी। सिंगल हाथ की ताली से भाई साहब का हम निमंत्रण करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। कुछ शब्द जो मैं भाई साहब के लिए आपके समक्ष रख रहा हूं, उनका बायो देता। करण भाई जी पिछले 33 साल से इस ज्ञान में चल रहे हैं, और मैं एक और चीज जोड़ देता हूं उसमें, ज्ञान उनमें चल रहा है। ज्ञान में चलना और ज्ञान हमारे अंदर चलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाई साहब पक्के बहुत ही धारणा युक्त, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा की एक एक श्रीमत को पालन करने वाली आत्मा है। भाई साहब एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, और भाई साहब एक नेशनल मेमोरी ट्रेनर हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आपने अनेक लेक्चर्स बहुत सारे संस्था, स्कूल्स, कॉलेजेस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पूरे भारतवर्ष में, ऊपर कारगिल से लेके नीचे कन्याकुमारी तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सब जगह जाके भाई साहब ने ये टॉपिक्स लिए हैं सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के साथ साथ। भाई साहब की विशेषता है कि आप 6 से 8 घंटे निरंतर योग में बैठे रह सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक होती है शारीरिक एकाग्रता, एक होती है मन को एकाग्र कर देना उस प्रभु के ऊपर। इतना अगाध प्रेम है इनके अंदर परमात्मा के लिए कि आप समझ सकते हैं कि 6-6, 8-8 घंटा बैठकर निरंतर योग कराते हैं। आजकल विशेष आप ऑनलाइन मेडिटेशन कराते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड 2000 ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहने जुड़ते हैं। सुबह 2 बजे से लेके 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त योग, और ये इवनिंग में भी कराते हैं नुमा शाम योग 6:30 से 7:30, जिसमें भी पूरी दुनिया से 2000 से ज्यादा आत्माएं लाभान्वित होती है। रोज होता है, एवरी डे उसका लिंक आता है और उसको अटेंड किया जाता है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। गहरी से गहरी बीमारियां, बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस, बहुत सारे जिनके मन की जो रोग होते हैं, मानसिक, जिनको हम कहते हैं कि मानसिक जो हमारे अंदर विकार हैं, बहुत प्रकार की मानसिक कमजोरियां, इन आत्माओं ने भाई साहब को रिंग कर करके बताया कि हमारी ठीक हो गई। गजब के रिजल्ट्स हैं उसके। आपने 25 हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस स्पिरिचुअल कार्निवल्स भारत के डिफरेंट सिटीज में भी किए हैं, जिससे कि कम से कम 20 लाख लोगों को भी उसका लाभ मिला है। आपने बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही रमणीक 3-day सेमिनार ऑन सीक्रेट्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस भी कराए हैं, जो कि भारतवर्ष में कम से कम 50 स्थानों पे आपने स्थानों पे अनेक आत्माओं ने इसका लाभ लिया है। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो जिसमें भाई साहब स्पेशलाइज करते हैं, पावर ऑफ विजन, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेमोरी पावर, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंड स्टेबलाइजिंग टेक्निक्स, डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर्स, जो आज हमारी क्लास थी सुबह, दैट इज कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ माइंड, हंट द ट्रेजर विद इन, सेल्फ एम्पावरमेंट, गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड डीप राजयोग मेडिटेशन। तो इन सभी स्पेशल टॉपिक्स में आपको महारत हासिल है। तो ऐसे अनन दादाजी को हमारे बीच देख के हम सबका सौभाग्य है कि आप हमें इतने सुंदर टॉपिक के ऊपर हमें ज्ञान देंगे। ओम शांति।
ओम शांति। नमस्कार। पीछे वालों ने हाथ ही नहीं जोड़ा। नमस्कार। कोई कोई मुस्कुराया भी नहीं। नमस्कार। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। देखा ये स्माइल कितनी अच्छी चीज है। इस स्माइल से मैंने 15 मिनट की मेहनत कम कर दी, नहीं तो आप 10-15 मिनट मेरे को घूर घूर के देखते। जब कोई नया स्पीकर पहले मिलता है ना, हम 10-15 मिनट तो तोलते हैं कि क्या सुनाने वाला है। बट ये जो स्माइल आई बीच में, दोस्ती हो गई इससे, अब आप अकल से नहीं तोलोगे, अब दिल से सुनोगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्माइल। संबंध बन गया इससे, स्माइल से रिलेशन बन जाते हैं, नजदीकियां, दोस्ती बढ़ती है, संबंधों में सुधार होता है, मन हल्का होता है, फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत फायदे हैं। इसलिए दिल से खुश होना सीखना चाहिए। जब हम इस दुनिया में आए थे, 6 महीने के थे, तो कैसे मुस्कुराते थे याद करो, कंडीशनली या अनकंडीशनली? अनकंडीशनली मुस्कुराते थे, सोच के या स्वभाव से? स्वभाव से। और अभी देखो चेहरे, अभी तो सोचते भी हैं कई बार तो भी मुस्कुरा नहीं पाते। पहले तो सोच के मुस्कुराते हैं कि ये जगह मुस्कुराने की है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर सामने वाले से कोई मतलब है कि नहीं? अब जितना मतलब, फिर उतना ही स्माइल भी रिलीज करते हैं, उतने, है ना, स्वार्थ के हिसाब से उतना ही। अब जहां पर ज्यादा स्वार्थ होगा, फिर स्माइल इतनी दे देंगे कि दूसरे को भी पता लग जाएगा कि झूठ मुस्कुरा रहा है। वैसे भी आजकल दुनिया में स्माइल है, मुस्कुराहट है, खुशी है, वो कैसी है? ज्यादा आर्टिफिशियल, फेक या रियलिस्टिक? ज्यादा रियलिस्टिक, फेक है, ठीक है। चलिए, इसमें भी बड़ी गहरी रिसर्च है, और इसमें एक शॉर्ट में बता दूं, फिर हम आज का बहुत सुंदर विषय है ये, जिसने समझ लिया बेड़ा पार है आपका, समझ लीजिए। जीवन में सुख शांति अपार है, लेकिन हमारी खुशी गायब क्यों हुई? हमारे अंदर दो फैकल्टी हैं, दिल और दिमाग, ठीक है। तो मैंने रिसर्च किया कि ये छोटा बच्चा 6 महीने का, वो खुश रहता है। जैसे जैसे बड़े होते गए, खुशी बढ़ती गई या कम होती गई? कम होती चली गई। तो जब अध्ययन किया तो ये पता चला कि छोटे बच्चे में दिमाग नहीं होता, यानी ब्रेन तो होता है पर दिमाग यूज नहीं करता है, ज्यादा सोच नहीं होती है। तो दिमाग नहीं चल रहा है तो दिल फ्री है मुस्कुराने के लिए। स्वभाव हमारा अंदर से खुश रहने का है या दुखी रहने का? अंदर से हम खुश रहना चाहते या दुखी? हाँ, तो वो स्वभाव से दिल मुस्कुराता है। अभी एक तो छोटा बच्चा खुश रहता है। एक दिन मैं कहीं गाड़ी में जा रहा था, दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ, गाड़ी के सामने से एक पागल व्यक्ति निकला, मेंटली डिस्टर्ब। मेरे को बड़ा सुंदर आइडिया टच हुआ, मैंने कहा इसके कपड़े फटे हैं ये फिर भी मुस्कुरा रहा है, इतना तो ये कार में बैठे मेरे साथ वाले नहीं मुस्कुरा रहे, ठीक है, वो भी अनकंडीशनली मुस्कुरा रहा है। ये दूसरा व्यक्ति मिला मेरे को, फिर मैंने स्टडी की तो मैंने देखा यहां भी फैक्टर वही है, दिमाग नहीं है। जब दिमाग था तो टेंशन में था, दिमाग इतना चलाया कि दिमाग चल गया। जैसे ही दिमाग चल गया वैसे ही दिल फ्री हो गया, फिर से खुश, क्योंकि दिल तो खुश होना चाहता है। तो जब तक ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो दिमाग दिल पर हावी हो जाता है, इसलिए दिल को यूज करना सीखो। आजकल परिवारों में सब रिलेशंस में क्यों गड़बड़ हो गई है, बाप बेटे का रिलेशन, पति पत्नी का, टीचर स्टूडेंट का, सब रिलेशंस के अंदर जो 25-30 साल पहले था क्या वैसा है? वैसा नहीं है। कारण दिमाग ज्यादा चलने लग गया, लॉजिकल ज्यादा हो गया है ना। तो एक तो ये पाठ अच्छी तरह सीखेंगे। अभी हम चलते हैं आज का टॉपिक हमारा कर्म फिलॉसफी का, कि जो कर्म हम कर रहे हैं इस दुनिया में, जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, ये किस विधि से हो रहा है, क्या ये हैफेजर्ड हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, या किसी सिस्टम से हो रहा है, उस सिस्टम की एक्यूरेसी क्या है। अगर सिस्टम से हो रहा है तो मैं दुखी क्यों हूं, ठीक है, अगर सिस्टम से है तो दुखी होना चाहिए। लेकिन दुख आता है कि नहीं आता है जिंदगी में? जो कहते हैं आ जाता है, खुशी गायब हो जाती है कभी ना कभी, हाथ उठाओ जरा। हाँ, मैक्सिमम। आज अगर ये टॉपिक समझ लिया, आज से आपका दुख समाप्त हो जाएगा, अगर समझ लिया तो, ठीक है। अच्छी तरह से सुनिएगा और बहुत गहरी बात है। सामने चित्र दिखाया है अर्जुन का, अर्जुन को मोह हो गया, बहुत से प्रश्न आ गए और उन प्रश्नों के कारण स्पष्टता नहीं थी तो हथियार डाल दिए, अपने कर्म से हथियार डाल दिए और ये कहा मैं, मेरे को राज्य भी नहीं चाहिए और मैं बिना इसके रह लूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। वहां युद्ध को कर्म बताया गया है। तो किस हालत में अर्जुन बैठा है आप देख सकते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण ने 18 अध्याय का ज्ञान सुनाया, अब ज्ञान सुनाने के बाद देखो क्या हुआ, वही अर्जुन है, खड़ा हो गया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यहां पर क्या स्थिति है ना, और यहां पर देखिए, तो जो ज्ञान है, समझ है, वो हमें इस कर्म क्षेत्र पर खड़ा करती है, पॉजिटिव बनाती है। तो आज हम समझते हैं कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। एक वीडियो हम पहले अनुभव करेंगे, पहले सीधे होके बैठो एक मिनट थोड़ा।
जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है
लाइट थोड़ा चेंज,
वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
आंखें बंद कर लो दो मिनट के लिए।
तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है, खाली हाथ आए और खाली हाथ गए, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो, ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। पर तुम क्या हो? जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा।
एक बार फिर से सुनेंगे।
जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। खाली हाथ आए और खाली हाथ गए, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो, ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। पर तुम क्या हो? जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा।
ओके। एक प्रश्न है मेरा, इन 3 मिनटों में मन स्थिरता की ओर गया या चंचलता की ओर? हाँ जी, ठीक है। जैसे ही आप सत्य चीज अपने अंतर मन को सुनाओगे, मन स्थिर होने लगेगा। परंतु ये भी याद करो, इस विधि से क्या कभी हमने स्वयं को सत्य सुनाया? भले हम इसको टीवी में भी देखते हैं, ये बात वही है, हमारे घरों में या कई जगह अपने स्लोगन लगे भी देखें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें वो मजा नहीं आता। पर अभी जो बैठे, मन कहीं ना कहीं शांति की ओर, सुकून की ओर बढ़ गया, क्योंकि अभी मन के अंदर, अंतर मन के अंदर मैसेज पहुंचाया गया। ऐसे बैठ करके आप अंतर मन में मैसेज पहुंचाओ। हम गलती क्या करते हैं, पूरा जीवन हमारा अंतर मन हमेशा हमें राइट गाइड करता है, लेकिन दिमाग को इस दुनिया ने पढ़ाया है, इस कारण से हम ज्यादा किसकी सुनते हैं? दिमाग की या दिल की? हाँ जी, ज्यादा दिमाग की सुनते हैं। जो कुछ बाहर से पढ़ाया गया, रॉन्ग कंसेप्ट भी पढ़ाए गए, जैसे किसी के घर में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु एक सत्य है या असत्य है? सत्य है ना, सबकी मृत्यु होनी है, सबको पता है, मेरी भी होनी, आपकी भी होनी, हमारे रिश्तेदारों की, जो भी पार्ट बाजार, सबकी होनी। परंतु क्या मैं तैयार हूं इसके लिए? सत्य बोल रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिस्क में स्टोर कर लिए है, बट इसको एक्सेप्ट नहीं किया अंदर। अभी बोल रहे हैं सत्य है, मृत्यु पर दुख होना चाहिए। क्या कहता है ज्ञान? दुख होना चाहिए। कर्मा फिलॉसफी बहुत सूक्ष्म पाठ है, ये एक घंटे का नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी पक्की आज करेंगे कि आपका स्थिरता का अध्याय आज शुरू हो जाए पूरा। ठीक, तो एक एक्सरसाइज मेरे साथ आप करेंगे, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, मेरे कहने के अनुसार करना। ठीक है, सीधे होके बैठ जाओ, थोड़ा सभी झुक करके अपने पांव को हाथ लगाओ, अभी अपने घुटनों को हाथ लगाओ, अभी अपने पेट को हाथ लगाओ, अभी अपने कंधे को हाथ लगाओ, अभी अपने मुंह को हाथ लगाओ, मुंह को हाथ लगाओ। मुंह को हाथ लगाओ, अच्छा अभी मुंह को हाथ लगाओ, अभी देखो पहले क्या कर रहे थे। अच्छा, मेरे को पता था ये मेरे सिर पे ही ठीकरा तोड़ेंगे, इसलिए मैंने पहले बड़ी सावधानी के साथ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैंने तीन बार बोला जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना। बावजूद इसके आपने क्या किया? और मैं कितनी बार चांस भी दिया, मैंने कितनी बार चांस दिया, मुंह को हाथ लगाओ, मुंह को हाथ लगाओ। ये है दिमाग हाईजैक हो जाना। जो जिस दुनिया में आप रह रहे हैं ना, इस विधि से एवरी सेकंड आपका दिमाग हाईजैक किया जा रहा है। जो भी चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं, वो आपका मन, अच्छा अभी आपको तो पता है, पहली क्लास में ही बता दिया गया था, लोअर केजी में बता दिया गया था, दिस इज योर माउथ, दिस इज ईयर्स, दिस इज नोजी। लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी वो क्यों फेल हो गए? सबकॉन्शियस आज भी बच्चा ही है, उसने ना तो आपसे पूछा ना बताया, केवल देखा उसने सामने और देख करके वैसे ही फॉलो किया। इसी प्रकार से जो कुछ आपके चारों तरफ हो रहा है, चाहे वो घटनाएं हो रही, बिलीव सिस्टम्स हैं, वो बिलीव सिस्टम भी आपके अंदर वैसे ही चले जाते हैं। आज इंसान को दुख क्यों होता है, कर्म फिलॉसफी में फेल क्यों हो जाता है इंसान? क्योंकि दुनिया में जो प्रचलित मान्यताएं हैं वो हम स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, जैसे किसी के घर में डेथ हुई, पड़ोसी आता है, अब डेथ अगर टाइमली है, 80-90 में हुई है तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा रो करके गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ी कम उम्र में डेथ हो गई, 40 में 30 में, तो क्या होता है? पड़ोसी ज्यादातर आकर के क्या बोलते हैं? बहुत बुरा हुआ, ठीक है, और क्या बोलते हैं? भगवान के बारे में क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो, ये सभी जगह प्रचलित है, कि भगवान ने ये अच्छा नहीं किया। इसका मतलब आपका वो पड़ोसी भगवान से ज्यादा समझदार है, तभी तो भगवान को भी गाइड कर रहा है कि भगवान ने ये अच्छा नहीं किया। अच्छा चलो ये भी मान लो उसने उस दिन थोड़ा सांत्वना में बोल दिया, परंतु ये बोलते 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 हमारा बिलीफ सिस्टम ही ये हो गया, और उससे जब हम ये बोलते हैं कि भगवान ने ये अच्छा नहीं किया तो क्या होगा, दुख बढ़ेगा या स्थिरता आएगी? दुख बढ़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास एक ऐसा ही केस आया, हम उसको ज्ञान से ठीक करते हैं, कर्म फिलॉसफी से ठीक करते हैं। उनकी 65 साल की एज थी, उनके हस्बैंड की शरीर छोड़ दिया, बहुत रो रहे थे, 30-40 साल की मैरिड लाइफ थी। तो आए तो मेरे सामने बिठाया, तो मैंने उनसे पूछा प्यार से, ये दुख जो हो रहा है इससे निकलना चाहते हो? बोले हाँ निकलना चाहते। मैंने कहा फिर 5-10 मिनट मेरी बात ध्यान से सुननी, आप भी सुनना, और जब कभी ऐसी बातें लाइफ में आए तो ये अप्लाई करके देखना, 100% सफलता की गारंटी है, 100%। हमने उनसे पूछा, देखिए आपका प्यार था, काफी लंबे समय से जीवन साथी आप रहे, साथ में पार्ट बजाया, परंतु मुझे ये बताओ क्या आप चाहते थे, अभी वो 65 साल की उम्र में चले गए, क्या आप चाहते थे कि वो 500 साल के होकर के जाएं? क्या बोला होगा उसने? बोली नहीं, 400, 300, 200। अब जैसे ही मैंने 100 बोला तो ये मुंडी रुक गई। इसका मतलब एक तो वो ये स्वीकार खुद कर रही है कि एक दिन तो जाना ही था, एक दिन तो जाना ही है। तो मैंने समझाया, देखो आप खुद ही बोल रहे हो 500 नहीं, 400 नहीं, 300 नहीं, 200 नहीं, अब ये 100 आप डिसाइड कैसे कर रहे हो, समझे? फिर समझाया कि क्या चीज डिसाइड करती है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को क्या चीज डिसाइड करती है? हाँ जी, तो उसने कहा भगवान, ठीक है। और फिर मैंने ऑप्शन रखी, आप भी बताना, भगवान डिसाइड करता है या हमारे कर्म डिसाइड करते हैं? हाँ जी, क्लियर कीजिए आज इसको, भगवान डिसाइड करता है या कर्म डिसाइड करते हैं? कर्म करते हैं। 15 मिनट के डिस्कशन, फिर उनकी बेटी बैठी थी तो हमने कहा क्या आपने इसको आज लिख के दे सकते हो, दोनों अभी तो जीवित हो, शरीर में हो, इसको लिख के दे सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ अगले 40 साल रहूंगी? दे सकता कोई गारंटी? आप दे सकते कोई भी एक दूसरे को वायदा किया ऐसे 100 साल तक नहीं जाऊंगा छोड़कर? नहीं है। ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो चारों तरफ फैले हैं वो हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, दूसरों को अज्ञानता के कारण रोता देखकर हमने भी वही रोने का बिलीफ सिस्टम वही हमने स्वीकार कर लिया है। आज इससे बाहर आ जाइए, सत्य को स्वीकार कीजिए, जो हुआ, हाँ जी क्या क्या सुना है, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। अच्छा, किस किस को विश्वास है इस पर, हाथ उठाओ। सॉरी टू से कि आप झूठ बोल रहे हैं, जिसको इस पे विश्वास होता है उसका जीवन अचल अडोल हो जाता है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख प्यास ऊंच नीच सब में एक समान हो जाता है, जिसको इन तीन लाइनों पर विश्वास होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। जब जो हुआ अच्छा हुआ, किसी से शिकायत होगी? कल घटना 10 साल पहले किसी ने हमारा बुरा किया, क्या उससे शिकायत होगी? नहीं हो सकती। अगर मन में थोड़ी भी शिकायत किसी से है, सच्चाई से बताओ, है या नहीं? थोड़ी भी है तो समझो अभी ये पाठ पक्का नहीं, तभी हमने कहा झूठ बोल रहे। समझ लीजिए आज, यदि निश्चय है कि जो हुआ, मैंने बहुत काम किया इस पर, प्रैक्टिकली काम किया है, जो कुछ भी होता है वो कल्याणकारी होता है। जब आप जीवन में इसको फील करो और जीवन में घटनाएं होने के बाद भी तब भी मन इस पर टिका रहे, तब कहेंगे कि मुझे निश्चय है। ऐसे ही कोई भाई ने, जैसे आपने हाथ उठा दिया, तो किसी ने कहा भाई मेरे को पूरा निश्चय, तो हमारी बात भी उन्होंने मानी नहीं, तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो परेशान थे थोड़े से, तो कारण पता लगा कि उनका जूता कुत्ता ले गया था उठा के। अरे बड़ी बात तो छोड़ो जीवन की, अभी सिर्फ जूता गायब हो गया, वो कह रहे थे जो हुआ अभी तो 150-200 रुपए का जूता ही गया है, इतने में ही स्थिति चली गई। कोई आपके कान में आके बोल देता है फलाने ने आपके बारे में ऐसे ऐसे बोला, तो क्या मन वैसा ही रहता है योगी, या कुछ हो जाता है अंदर? तो इसका मतलब निश्चय नहीं। आज कर लो इसको निश्चय, इसको और गहराई में, मैंने कहा ना एक लेक्चर का नहीं, बट इसको गहराई में समझा देंगे आपको हम, और भी समझा देंगे, इसकी एक्सटेंशन क्लासेस भी दे देंगे कि कैसे इसको समझा जाए, कैसे जब बड़ी घटनाएं होती है जीवन में उसको कैसे समझा जाए कि ये अच्छा हुआ है। कोई मुंह पर गाली दे रहा है, हमें भी पहले दुख होता था, आज मजा आता है। गाली जब कोई दे आज हमको आनंद आता है, क्यों? क्योंकि जो भी हमारी अंदर महानता आती है, जैसे मूर्ति कब बनती है? जब उसको छैनी हथौड़े की चोट लगती है। जीवन में भी महान कौन बनते हैं, जिनको चोट लगती है या जो सिर्फ आराम के गद्दों पर सोते हैं? चोट लगती है, फिर जब हमको चोट लगती है तो फिर हम विचलित क्यों होते? उस घड़ी क्यों नहीं सोचते कि ये मेरी मूर्ति निखर रही है, इन गालियों से कुछ और महानता आने वाली, और ये होता है अगर आप उसको पॉजिटिवली लेंगे। तो अगर आप कहेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो आपको आज तक होने वाली सारी घटनाएं अच्छी लगेंगी, और वो हर घटना आपका अनुभव बन जाएगी, नहीं तो हर घटना दुख बन जाएगी। कितने दुख की बातें हैं, अगर अभी बैठ जाए ना एक दूसरे के साथ, है ना, तो ज्यादातर का ये कहना होता है बस मैंने इस घर के लिए जितना किया है ना, बस पूछो मत, मैंने जितना जीवन में सहन किया है ना, पूछो मत, ठीक है, ये कर्म फिलॉसफी के विरुद्ध है। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा और।
जो हुआ वो अच्छा हुआ,
एक्यूरेसी ऑफ कर्म सिस्टम, आज ये क्लियर करके जाना, ये जो कुछ घटनाएं हो रही हैं इस संसार में, कितना कुछ हो रहा, अभी कोरोना आके गया, रोज कितनों का एक्सीडेंट हो जा रहा है, रोज 2 साल के बच्चे भी मर जा रहे हैं, है ना, बुजुर्ग होकर भी कहीं जाते हैं, और भी कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो ये कर्म फिलॉसफी का जो सिस्टम है ये कितना एक्यूरेट है, पहले तो ये बताओ आपका मन क्या कहता है। ये वैसे ही चल रहा है, किसी के साथ भगवान कुछ कर देता है, किसी के साथ कुछ कर देता है, या एक्यूरेट है, या कंफ्यूज्ड हो, है ना? मैं ये वाला उत्तर ठीक है, कंफ्यूज्ड नहीं जाता, और आज ठीक कर लीजिए 100%। कर्म फिलॉसफी का सिस्टम 100% ठीक है। जो कुछ आपको मिलता है आपका ही मिलता है। अभी मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ, मानो गाड़ी है मेरे पास, मानो मेरे पास ये कोट है, ये किसके कर्मों के कारण मिला है? अपने ही। जो आपके पास है वो किसके कर्मों के कारण मिला है? अपने। ऐसे ही दुख भी या नेगेटिव बातें भी किसके कर्मों के कारण मिली? अपने ही। लेकिन हम सारा जीवन दोषी किसको ठहराते रहते हैं? दूसरों। हम कारण ढूंढते रहते हैं, ये उसके कारण है, ये उसके कारण है ना। दिन में कोई बात गलत हो जाती है तो अपनी गलती ढूंढने से पहले देखते हैं सवेरे सवेरे मुंह किसका देखा था, है ना। बोलते हैं आज फलाने का मुंह देखा था ना, इसलिए आज ये गड़बड़ हो गई। 100% नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा विश्वास करने में टाइम लगेगा क्योंकि आज तक इतना स्ट्रांगली किसी ने बताया नहीं होगा। और जो भी विचलित होता है मन, थोड़ा भी विचलित होता है, समझो अभी निश्चय नहीं है। गीता में ही कहा गया निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसको संपूर्ण निश्चय होता है वो स्थिर होता है। और तभी अर्जुन 18 अध्याय के बाद स्थिर हो गया था, फिर वो योग युक्त हो गया। उसमें बताया है कि अब मैं वो कर्म करने के लिए तैयार हूं जिस विधि से आप बताओगे। भगवान को सरेंडर हो गया फिर। तो इस संसार के अंदर वीक बिलीफ सिस्टम होने के कारण हम भी वीक हो गए, इमोशनली वीक हो गए, है ना। तो अभी कोरोना में इतनी बातें हुई तो छोटे छोटों ने भी शरीर छोड़ा। अब कर्म फिलॉसफी के हिसाब से वो ठीक हुआ या गलत हुआ? अच्छा, एक योगी अगर उसको देखेगा वो क्या कहेगा, ठीक हुआ या गलत हुआ? देखिए, एक आम व्यक्ति कहेगा अरे तो बहुत गलत हुआ, फिर वो गलत सोचेगा, फिर चाइना को गाली देगा, फिर चाइना के बाद जो जो सिलेंडर नहीं पहुंचा पा रहे उनको गाली देगा, फिर और कितनों को गाली देगा। और मन का हाल देखो क्या होगा, सोचो जरा कितना बेचैन होगा, परेशान होगा। लेकिन जिसे ज्ञान है, एक और हम बता देते, शास्त्रों में लिखा है बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कर्मा का लॉ ऐसा है कि हर कर्म का वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ भी घटना आपके जीवन में, आज आपको ये ज्ञान जो मिल रहा है, आपका माउंट आबू में यहां आना हुआ, तो इसको कल जाकर के क्या बोलेंगे कि जीवन में ये 4 दिन सौभाग्य के मिल गए, ऐसा ही बोलेंगे ज्यादातर कि ये दिन अच्छे। तो वो भी आपके ही कर्मों से मिले हैं, उसमें किसी का मेरा या किसी और का उसमें वो नहीं है। तो हमको अच्छी तरह से समझना है, भले इसको आज पूरा समझ में ना आए, इतना हैवी इसका वो है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके बिलीफ सिस्टम में, जो पहले सोचते आए हैं और जो आज आपको हम बता रहे हैं। जबकि हम वही बता रहे हैं जो आप बोल रहे हो, जो हुआ हाँ वही तो मैं बता रहा हूं। हमने सुना है, बिलीव नहीं किया है। 100% एक्यूरेट है सिस्टम, भले इसको समझने में थोड़ा समय आपको लग जाए, लेकिन आज से ये मन को बोल दो इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता है, सब कुछ एक्यूरेट होता है, कर्मानुसार सब एक्यूरेट होता है। तो क्या होगा, दुख कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर पूरा निश्चय हो गया तो दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक इमोशनल होंगे तब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी, है ना। क्योंकि अभी हम इमोशनली वीक हो गए, इसलिए हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कर्म फिलॉसफी को, क्योंकि हमने प्लान किया हुआ है ऐसा हो ऐसा हो। हमने सुख की प्लानिंग तो की है, दुख की तो नहीं की। पर पूरे साल के अंदर बरसात भी आती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, सब आता है ना। जीवन में भी सुख भी है तो दुख भी है, सब है और सब आवश्यक है और सब हमारे कर्म अनुसार ही है। देखिए, जो मेरा था मुझे मिल गया। कई बार ऐसा होता है कोई कारण बन जाता है हमारे नुकसान का, जैसे मेरे को हुआ लाइफ में ऐसे 50-60 लाख रुपए का नुकसान का कारण बन गया कोई। अगर कर्म फिलॉसफी का ज्ञान ना हो तो विचलित हो जाऊं। 50-60 लाख हमारे लिए बहुत बड़ी, अगर नॉर्मल उसके हिसाब से देखो बड़ी वो है, ठीक है, लेकिन इतना पक्का निश्चय है कर्म फिलॉसफी पर कि जो भाग में होगा वो भाग के आएगा, जो भाग में नहीं होगा वो भाग जाएगा। तुम्हारे पास वही रहेगा, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पास वही रहेगा जो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है और तुम्हारे पास है, वो ले जाएगा। कोई बेटा बन के ले जाएगा, कितनों के बेटे ले गए, आप में से भी बैठे होंगे कहीं, कितनों के जवाई ले गए, कितनों के दोस्त ले गए, ठीक है, प्लान नहीं किया था आपने, आपने प्यार में ही दिया था। लेकिन ये क्यों होता है इसका भी ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। क्यों क्यों ले गया? अब मानो कोई ले गया, अब मेरा ले गया 50 लाख रुपया, अब मैं क्या रोऊं बैठकर? आप मेरे सजेशन दे दो, थोड़ी सी रोऊं, दुखी हों, चिंता करूं? हाँ, आप कहेंगे भाई फिर ऐसे खाली बैठ जाएं क्या, ये प्रश्न आएगा, नहीं, प्रयास करो। लेकिन बिना अपनी मानसिक स्थिति को गड़बड़ाए आप प्रयास करो, प्यार से बात करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको जरूरत है और मुझे लेना है, कोर्ट केस भी शांति से कर सकते हैं, पर मुख्य है स्थिति को खराब नहीं करना। पर मैंने कोर्ट केस भी नहीं किया और न करना है, क्योंकि मुझे पता है जीवन का बड़ा खजाना 50 लाख रुपया या शांति। हाँ जी बोलो। आज मैं वो नुकसान की बात से कितना फायदा हो रहा है कि आज आपको मैं कॉन्फिडेंस से ये बात बता पा रहा हूं कि नुकसान होने पर भी कैसे ये पाठ में टिका रहा जा सकता है, कुछ भी हो जाए। एक बार वो तो इससे छोटी सी घटना थी, सेवा के लिए गाड़ी ली, तो गाड़ी में जैसे ही मेडिटेशन करवा के बाहर निकले हम, बाहर गाड़ी का जो फ्रंट ग्लास होता है बड़े वाला, वो स्मैश था, नई गाड़ी का। अभी आपके साथ ऐसा हो भाई, गाड़ी ली है 5 दिन पहले और बाहर निकले तो उसका सामने वाला शीशा टूटा पड़ा है, तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, मेरे साथ कुछ भाई थे जो अभी मेडिटेशन, जिनको मैं करवा के उठा था, अब वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि अब देखते हैं, भाई साहब अंदर तो बड़ा भाषण कर रहे थे और मेरे को पता था अब इस कैमरे मेरे ऊपर है। अच्छा, फिर एक दो ने थोड़ा उंगली भी लगा दी मेरे को, बोले भाई साहब कितना नुकसान हो गया है ना, तो आपको कुछ नहीं हो रहा क्या? तो मैंने कहा अच्छा मेरे 2-3 प्रश्नों का जवाब दो, ये जो कुछ भी है हमारे पास ये किसका है? दुनिया में भी क्या कहते, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन भगवान के पास ना दूसरी आवाज जाती है, तन मन धन सब तेरा, ये तो ठीक है, दूसरी आवाज यहां से जाती है, तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। जब तन मन धन सब तेरा है तो फिर चिंता तुमको क्यों हो रही है? ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, नहीं तो मेरा नंबर नोट कर लेना, मेरे से पूछना प्रश्न, मैं 100% राइट जवाब दूंगा इसके। तो मैंने उनसे यही पूछा, ये गाड़ी किसकी है? जब ऐसे प्यार से पूछा तो बोले बाबा की, है ना, हम भगवान को बाबा बोलते प्यार से। मैंने कहा अच्छा, अभी इस पे 8-9 हजार रुपया लगेगा और मेरे बैंक की पासबुक पे नाम बी के करण भाई लिखा है, लेकिन उसमें जो पैसा है वो किसका है? बोले बाबा का। अच्छा मैं किसका हूँ? बोले बाबा का। मैंने कहा देखो, गाड़ी बाबा की, धन बाबा का, मैं बाबा का, फिर टेंशन क्यों होनी? और ये रियलिस्टिक सोच है, जब भगवान का है सब कुछ तो टेंशन क्यों? ठीक है, कुछ घटनाओं को मानो जो हो गई जीवन में, मानो किसी ने शरीर छोड़ दिया, क्या रोने से वापस आ जाते हैं? हाँ जी, नहीं ना। हमारे घर में माता जी की डेथ हुई, सब रो रहे हैं बुरी तरह से, हम साक्षी होके देख रहे हैं। फिर हमने बाद में बात की उनसे, हमने पूछा कि कितने दिन तक रोएंगे? 5 दिन के बाद फिर पूछा, आज उतना रो के दिखाओ जितना पहले दिन रोए थे। प्रैक्टिकली देखना, 1 महीने के बाद अब उतना रो के दिखाओ जितना 5 दिन बाद रो रहे थे। ये सब टेम्परेरी फेजेस होते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? हाँ, उस दिन क्या लग रहा था, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, 15 दिन 20 दिन 25 दिन। और अगर कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है तो इतने दिन भी नहीं लगते भूलने में। प्रैक्टिकल जो जीवन दुनिया की बात है, ठीक है, तो पक्का कीजिए जो मुझे मिला है वो अपना ही मिला, चाहे वो सुख मिला या दुख मिला, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलता किसी को आपको, ठीक है। तो इसमें कोई प्रश्न भी होगा तो हम जवाब दे देंगे आपको। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु स्वयं है, हमारे ही किए हुए कर्म जो हैं, कुछ पिछले जन्मों के कर्म हैं, कुछ इस जन्म के पीछे के कर्म हैं, उन सभी को ही हम भोगते हैं यहां पर। तो अपना मित्र, हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई भी बुरा नहीं कर सकता, तो आप निर्भय हो जाओगे। अब किसी ने मेरे 50 लाख का नुकसान कर दिया जैसे बताया, परंतु कर्म फिलॉसफी के अनुसार मेरी शांति को नुकसान नहीं कर पाया, अब ये बताइए क्या मैं नुकसान में हूं या फायदे में हूं? जोर से बोलो। हाँ, ये आपके मन को सुनना चाहिए, आपके मन को ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि कल कुछ बात अगर आपके साथ होती है तो यही पाठ रिपीट करना है आपको अपने लिए। फायदे में है, जिसने शांति को बचा लिया समझो उसने बहुत कुछ बचा लिया, सब कुछ बचा लिया। तो मुझे जो मिला मेरा ही मिला, अब मैं अपना मित्र हो गया ऐसी सोच के कारण, लेकिन यदि मैं इसके विरुद्ध सोचूं तो फिर कितने झगड़े हो जाते हैं और फिर हम अपना समय एनर्जी कितना वेस्ट कर लेते हैं। आजकल जीवन में सबका मैक्सिमम समय एनर्जी कहाँ जा रहा है, यूजफुल कामों में या वेस्ट में ज्यादा जा रहा है? कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है? उसका कारण यही है कि ये जो कर्म फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही, जो भी व्यर्थ चिंतन होता है, चुगली निंदाएं पर चिंतन, ये सब का कारण यही है कि हमें निश्चय नहीं कि जो हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। स्थिरता आ जाएगी इसमें, और फिर अगर ऐसे लोगों का संगठन हो आपके आसपास जिनको सभी को ऐसा निश्चय हो, वो स्वर्ग की अनुभूति कराता है। यहां पर आप देखेंगे वायुमंडल में इतनी पॉजिटिविटी क्यों है? इसका कारण यही है, क्योंकि यहाँ के भाई बहनों को ईश्वरीय ज्ञान जो यहाँ सुनाया जाता है, 33 वर्ष हो गए हमको, उस ज्ञान के कारण हमारे अंदर ये शक्ति आई और इतना पावरफुल पॉजिटिव बिलीव सिस्टम हमारा बना। यहाँ देखिए कार्मिक अकाउंट कैसे होता है। नॉट इवन ए सिंगल थॉट एंट्री इज मिस्ड, जैसे हमारी बैंक की पासबुक होती है, उस वाली पासबुक में कोई ना कोई एंट्री फिर भी रह जाती है गलती से, परंतु यहां पर जो हमारे कर्मों की पासबुक है उसमें एक भी एंट्री मिस नहीं होती है, एक थॉट की एंट्री भी मिस नहीं होती है। एक मैं महाभारत से आपको उदाहरण सुनाता हूं। एक बार जब महाभारत पूरा हो गया तो पांचों पांडवों को और द्रौपदी को अहंकार हो गया, सबको ये लग रहा था ये युद्ध मेरे कारण जीता गया, अर्जुन को लग रहा था कि मेरे धनुष ने जितवाया, युधिष्ठिर को लगता है मेरे धर्म ने जितवाया, भीम को लगता है मेरे बल ने जितवाया, नकुल सहदेव का अपना अहंकार, सबको। द्रौपदी कहती इनके पीछे मैं नहीं होती तो ये क्या कर लेते, मैं ही तो शक्ति थी इनके पीछे। और जिसने युद्ध जितवाया उसको भूले बैठे हैं। तो भगवान हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ विधियां रचते हैं। तो श्री कृष्ण भी एक बार उनको बगीचे में लेकर के गए, आम के बगीचे में लेके गए, और वहां जाकर के अर्जुन को कहा, अर्जुन वो आम देखते हो, उसको तीर से तोड़ सकते हो। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि मेरे को इतना सा, ये छोटा सा काम, इतना बड़ा धनुर्धर हूं मैं। उसने कहा, केशव क्या बात करते हो, ये कौन सी बड़ी बात है, ये पूछने की बात क्या है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं इसको इस अंदाज में तोड़ूंगा कि लोगों को पता रहे कि अर्जुन ने तोड़ा। तो उसने तीर आकाश में फेंका और ऊपर से तीर आम को काटता हुआ नीचे आ गया, आम नीचे गिर गया। तो अर्जुन ने फिर अहंकार से कहा, देखो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसको वापस लगा सकते हो। बोले वो गिराना बड़ा काम नहीं था, अब वापिस लगा के दिखाओ। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है, अगर तुम्हारा मन बिल्कुल प्योर होगा तो लग जाएगा। अब वो उनके सूक्ष्म अहंकार को खत्म करने के लिए लाए हैं। तो अच्छा, फिर हमको अपना अहंकार दिखता नहीं बहुत है ना? उसने कहा ठीक है। उसने ऐसे श्री कृष्ण को याद करके ऐसे आम फेंका, लेकिन आम नहीं लगा, गर्दन नीचे हो गई। अब युधिष्ठिर की तरफ इशारा किया तो युधिष्ठिर ने भी कोशिश की, उसको भी अहंकार था, फिर गिर गया। फिर उसके बाद भीम, नकुल, सहदेव सब फेल हो गए। अब बारी आई द्रौपदी की। अब द्रौपदी ने कहा, मेरी भी परीक्षा होगी क्या? बोले एक बार ट्राई कर लो। तो द्रौपदी ने जब ऐसे फेंका तो आम फिर जमीन पर। अब द्रौपदी रोने लगी। उसने कहा, मैंने क्या काम किया ऐसा, मैं कहां अपवित्र हूं जिस कारण से ये आम नहीं जुड़ा। तो श्री कृष्ण ने कहा, याद करो, हम किस बात पर बोल रहे हैं, एवरी सिंगल थॉट इज अकाउंटेड कर्म फिलॉसफी में। अगर आपके मन में एक संकल्प गलत चला है वो भी आपके अकाउंट में ऐड होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, लेकिन हम इतना ध्यान देते नहीं है, इसलिए सूक्ष्म कहानी आपको बता रहे हैं। तो याद करो, जब पांडवों के साथ तुम वनवास में थी, एक दिन स्नान करने के बाद केश सुखाने के लिए ऊपर छत पर गई थी। अब जब भगवान धर्मराज बनता है ना तो सारा ऐसे वीडियो चलता है, सामने दिखाई देगा सब क्या क्या हुआ था, जो हम भूले पड़े रहते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सब ऐसे सारी वीडियो सामने आ जाती है। तो उसने देखा द्रौपदी को दिख रहा है, तो बोलो केश सुखाने ऊपर गई थी उस समय तुमने कुछ देखा था, तेरे मन में क्या संकल्प आया था वो बताओ। तो द्रौपदी ने बताया कि मैं ऊपर गई तो मैंने दूर एक घुड़सवार देखा था और मेरे मन में विचार आया था कि कितना सुंदर बांका नौजवान घुड़सवार है, ये थॉट आया था। तो श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी तेरे इस संकल्प के कारण आज ये आम जुड़ा नहीं। कर्मा फिलॉसफी इज सो डीप। तो अपने मन में चल रहे एवरी सिंगल थॉट को भी आप कंसीडर करो। अभी इस समझ से, इस ज्ञान से आपको ये हो जाएगा एक थॉट भी वैल्यूएबल है, एक थॉट भी पाप करा सकता है, एक थॉट भी भाग्य बना सकता है। इसलिए कोई पड़ोसी आकर के सुनाता है तो जनरली हम क्या करते हैं, उसके साथ ही तीसरे की बुराई सुना रहा है हम मुंडी हिला देते हैं, उसका सहयोग दे देते हैं। दे देते कि नहीं दे देते? तो क्या पाप नहीं बनता इसमें? इसमें भी पाप बनता है, ठीक है। तो कुछ यहीं मिलेगा हमारे कर्मों का और कुछ आगे मिलेगा। जैसे पौधे होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, सब्जियों के होते हैं, वो आज बोया 3 महीने के अंदर उनका फल मिल करके पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बड़ा होने में समय लेते हैं, कुछ संकल्प, लेकिन फिर उनका लंबे समय तक फल मिलता है। तो जैसे एक ट्रांसफर एंड रिटायरमेंट हमारी होती है, जब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर होते हैं तो उसमें, और जब आप रिटायर होते हैं उसमें अंतर क्या होता है? अकाउंट्स में क्या अंतर होता है? अंतर होता है ना, उसमें टोटल क्लियरेंस होता है जब आप रिटायरमेंट लेते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में स्क्रू ड्राइवर भी आपने लिया होगा ना लोन पर, है ना? मैंने स्क्रू ड्राइवर क्यों बोला मैं आपको बता दूं, हम भी आपकी तरह एयरफोर्स में रहे हैं 20 साल, आई वाज इन एयरफोर्स, ठीक है। एक स्क्रू ड्राइवर आपने लिया हुआ है, जब तक उसको क्लियर नहीं कराओगे आपको अकाउंट सेक्शन वाले स्लिप बना के दे देंगे कि ये 50 रुपए का था, ये काटो, पूरा क्लियरेंस करके देंगे, है ना? लेकिन कुछ चीजें जब आपकी ट्रांसफर होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो उसमें कुछ चीजें वो हो जाती है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड है, जैसे आपका रिटायरमेंट पे वो पूरा क्लियर किया जाता है, लेकिन जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं तो उसको क्लियर नहीं करते, वो आपके साथ चलता है। ऐसे ही कुछ चीजें आपके साथ चलती हैं और कुछ यहीं पर हम भोग लेते हैं, है ना? दो शब्द होते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म फिलॉसफी में समझने की बात कि कई बार हमें कर्मानुसार, पिछले कर्मों के अनुसार अच्छा नहीं मिला, परंतु यदि पुरुषार्थ अच्छा है तो आप उसको बदल सकते हो। जैसे धीरू भाई अंबानी, उसको पिछले जन्मों के हिसाब से जो भाग्य मिला वो गरीब था, लेकिन इस जन्म में अपने दृढ़ संकल्प की शक्ति से उसने कार्य किया और कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है। तो यदि आपके पास पिछले कर्मों के कारण कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप वर्तमान में अपने थॉट सिस्टम को इतना पावरफुल बनाइए कि अपने कल को बदल सकते हैं। इस जन्म में हमें भी जब सहयोग मिला आध्यात्मिकता के ज्ञान का और ये सब चीजें समझ में आई तो कुछ भी नहीं आता था, एक व्यक्ति के सामने बोलना नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे सीखा, आज जैसे बताया, आज रोज सवेरे 2000 लोगों को योग कराते हैं, ये सब हमने यहाँ के ज्ञान की शक्ति की बदौलत सीखा है। आप अपना पार्ट बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं, पीछे से जो मिला उसमें आप कर्म की शक्ति जोड़ दीजिए, आप अपना भविष्य बदल देंगे अपना, ठीक है। और कईयों को अच्छा मिलता है, अभी धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल लीजिए, उनके बच्चे, उनको अच्छा मिला, परंतु आज एक का क्या हाल है, दूसरे का क्या हाल है, कई बार अच्छा मिलता है और वो बर्बाद हो जाता है ना। सब अपने दोनों फैक्टर ध्यान में रखने हैं, पर ज्यादा इसमें जो है वो कर्म है, आपके वर्तमान के कर्म, वर्तमान के संकल्प। बी से होता है बर्थ और डी से होता है डेथ, और बी और डी के बीच में क्या होता है, सी, सी से होता है च्वाइस। इस च्वाइस पर डिपेंड करता है कि आपका पार्ट कैसा होने वाला है, आपने कैसे दोस्त चुने, कैसी किताबें चुनी, कैसे थॉट सिस्टम चुने, उसके कारण आपका वर्तमान जीवन है। आज से आप चूज करना चेंज कर दीजिए, आज की क्लास में कुछ अच्छा लगा, आज से ये चूज कर लीजिए, आज तक जो लोगों ने पढ़ाया था उसको किनारे कर दीजिए, क्योंकि उसने दुख दिया था, लेकिन इसको सुनते सुनते क्या लग रहा है, अगर ये हो जाए हम मदद करेंगे आपको, हमारे सेवा केंद्र मदद करेंगे आपको समझाने में, आपको ये पाठ पक्का कराने में, अगर हो जाए तो क्या कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, यस। तो आज ये चेंज कीजिए बिलीव सिस्टम के अंदर, जो भी बातें शॉर्ट में बताई हैं, पूरा डिटेल है इनका, एक एक चीज पर, भाग्य और पुरुषार्थ पर तो पूरा 2-3 घंटे का चिंतन है, डिस्कशन है। तो अच्छा मिलता है कई बार तो लोग बुरा बना देते हैं, पर आज से हमें उसको अच्छा बनाना है। ये वर्ड जो है इको चैम्बर है, पूरा इको चैम्बर का मतलब है कि मानो यहां से एक शब्द निकला है तो वो घूम करके आपके कान में ही आना है, जैसे गुंबद देखा ना आपने, तो हमारा हर संकल्प ये ब्रह्मांड सुनता है। ये आजकल तो इसके ऊपर बहुत सी बातें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह बताया जाता है, और इसको जो प्रैक्टिकली अनुभव करके देखिए, आप जो संकल्प पैदा करते हैं, जिस तरह की आप एनर्जी पैदा करते हैं, तो उसी तरह की लोग, उसी तरह की चीजें, उसी तरह की घटनाएं को आप आकर्षित करते हैं। मैंने करीब 10 साल पहले, मैं 2009 में रिटायर हुआ था, 10 साल पहले मैंने एक मैसेज यूनिवर्स में दिया था कि यूनिवर्स की सब पॉजिटिव शक्तियां मेरे पास आ जाओ, क्योंकि चारों तरफ बहुत से नेगेटिव टेंडेंसी के लोग भी होते हैं। दुनिया की सारी पॉजिटिव शक्तियां मेरे पास आ जाएं, जो मेरे पास हैं वो पॉजिटिव हो जाएं, जो पॉजिटिव नहीं हो रहे, होने का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा किनारा दे दें, मुझे आगे जाना। 7-8 साल लगे और आज हम ये कह सकते हैं कि उसमें 95% से ज्यादा सक्सेस हो गई। आप सिर्फ यूनिवर्स में पॉजिटिव मैसेज दीजिए, पॉजिटिव सोचिए हमेशा, आप देखिए आपके जीवन में कितना पॉजिटिव होगा। लोगों ने हमें नेगेटिव सोचना सिखा दिया, इस कारण से हम नेगेटिव मैसेज देते हैं। जब हम कहते हैं ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, गलत हुआ, तो क्या होगा, दुख निकलेगा या सुख, तो गलत तो शुरू हो गया। गलत कैसे होता है, जब आपने ये बोलना शुरू किया कि गलत हुआ, मानो किसी ने आपको गाली दी तो आपने कहा गलत हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, तो गलत बोला तो आपके अंदर फीलिंग क्या पैदा हुई, दुख की फीलिंग, तो गलत तो होना शुरू हो गया। और आपने अगर कहा कि सब अच्छा होता है तो देखो फीलिंग कैसी, स्थिरता है, शांति, अच्छा होना शुरू हो गया, ठीक है। पहले यहां अच्छा हो जाए, यहां अच्छा हो जाए, उसके बाद जीवन में भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म कोई एक दो प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पूरा करेंगे क्लास को। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चिंतन करना। और कभी भी कोई भी डाउट हो इसमें, सेवा केंद्र पर जाओ, वहां पर आप 7 डेज कोर्स करेंगे तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ओके जी, जी हाँ जी। कर्म कितने प्रकार के, इनकी क्लासिफिकेशन कई तरह से होती है, जैसे सुकर्म, विकर्म, अकर्म। देवी देवताओं के कर्म होते थे जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव वो भाव वो नहीं होता था, वो अपने सिर्फ सोल कॉन्शियस में कर्म करते थे, उसको अकर्म कहते थे। उनका ना बुरा प्रभाव होता ना अच्छा होता प्रभाव, है ना, वो नेचुरल अच्छी अवस्था में रहते ही है। जब आप बॉडी कॉन्शियस में कर्म करते हैं यानी नेगेटिव स्थिति में, तो उसे विकर्म होते हैं, उसे कोई ना कोई काम विकार, क्रोध विकार, अहंकार, जो अंदर भावना के साथ कर्म किया जाता है वो विकर्म बनता है। और जब श्रेष्ठ, अभी जैसे ये कर्म हो रहा है, ये कर्म क्या कहेंगे आप, विकर्म कहेंगे, अकर्म कहेंगे या सुकर्म कहेंगे? हाँ जी, हाँ, इसको अकर्म भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी हम उतना सोल कॉन्शियस नहीं देवताओं जैसे। विकर्म नहीं, विकर्म कब बने, मानो हम सुना तो रहे हैं पर अगर अंदर से भाव ये आ जाए कि देखो मैं कितना अच्छा सुना रहा हूं, भाव ये आ जाए तो क्या बन जाएगा, फिर विकर्म बन जाएगा। ये भले शब्द वही है लेकिन वो विकर्म बन जाएगा क्योंकि अहम भाव है अंदर। ठीक है, अलग तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं कई लोग कर्मों को, संचित कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के जमा किए हुए प्रारब्ध कर्म होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह की क्लासिफिकेशन है इसमें। सरल भाषा में समझो बस, हर कर्म को अच्छी तरह से समझो बस, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे, सीधे होके बैठेंगे, सबका शॉर्ट में जो हुआ अच्छा हुआ, बस इसमें टिक जाओ 1 मिनट। जो हुआ अच्छा, 100% अच्छा हुआ, 100%। इसलिए सबको क्षमा, आज से पहले हमने 100% क्षमा कर दिया सभी को, जो कुछ भी जीवन में किसी ने किया, वो 50 लाख वाले को भी और सभी को, जिसने जो जो किया था सबको क्षमा कर दिया, दिल को इतना साफ कर लिया, भगवान के लिए जगह बन गई। नहीं तो सारी जिंदगी वही बैठा रहता दिल दिमाग के अंदर और भगवान को भी नहीं बैठने देता, अंदर बैठकर कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता। ठीक है, क्षमा कर दिया, बिल्कुल बैठ के देखो, आप भी करके देखो, मजा आ जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, निश्चिंत, भगवान साथी है।
पल पाओगे। के